तेरा मेरा मनवा कैसे इक होई रे, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो अरुझाई रे। आप समझ ही गए होंगे कि हम संत कवि कबीर दास जी की ही बात करने जा रहे हैं। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर के व्यक्तित्व को इस तरह शब्द दिए, ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय। बुद्धि ही विचारों की जननी होती है, जैसी हमारी बुद्धि होती है वैसे ही विचार होते हैं। बुद्धि का व्यक्तित्व से घनिष्ठ संबंध है। हमारा व्यक्तित्व स्वभावगत शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का समष्टि स्वरूप है। कबीर दास जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी क्रांतिकारी भावना। आप क्रांति की प्रतिमूर्ति थे और आपने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि धर्म में, समाज में और लोक में जो मिथ्याडंबर है उनका उन्मूलन करने के लिए क्रांति बहुत जरूरी है। वे डंके की चोट पर कहते हैं कि पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ी चले हम कछु ना लिया। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि विश्व की प्राचीनतम भाषाओं की अगर बात की जाए तो संस्कृत एवं तमिल को हम शीर्ष पर पाते हैं। इसके साथ ही हिंदी साहित्य ने अपने आप को इतनी तेजी से समृद्ध किया है कि थोड़े से समय में ही हिंदी विश्व के अग्रणी साहित्य में गिना जाने लगा है। इसलिए हमारे लिए ये गर्व की बात है कि विश्व का प्राचीनतम साहित्य और विश्व का सबसे समृद्ध साहित्य दोनों ही भारतवर्ष की झोली में आते हैं। आज हम हिंदी साहित्य के अद्वितीय कवि संत कबीर दास जी के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, उसके साथ ही विश्व के प्राचीनतम साहित्य तमिल के महान कवि तिरुवल्लुवर जी के बारे में भी जानेंगे। और स्वर्ण ज्योति जी और अजय जी कबीर दास और तिरुवल्लुवर जी के साहित्य की समानताओं पर संवाद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वर्ण ज्योति जी और अजय जी को अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं।
नमस्ते।
और मैम, आज आप हमें कबीर और तिरुवल्लुवर जी के बारे में बताएंगे ना?
हाँ, नमस्ते अजय। नमस्ते अजय जी।
नमस्ते स्वर्ण ज्योति जी। नमस्ते भावना जी, कैसे हैं आप दोनों?
हम बढ़िया हैं।
अच्छा, शुरू करें?
जी सर, बिल्कुल करें।
मैं श्रोताओं को पहले नमस्कार कहना चाहूंगा और स्वर्ण ज्योति जी का कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप सब श्रोताओं को पता होगा कि पिछले कार्यक्रम में हमने तमिल साहित्य के उद्गम और विकास पर चर्चा की थी, और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नया विषय लेकर आया हूँ। यह एक बहुत सुखद बात है कि भारतीय भाषाओं के जितने भी साहित्य लिखे गए हैं उनमें समानताएं ज्यादा हैं, विषमताएं कम हैं। और जब समानताओं की बात करते हैं तो कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आते हैं, और इन्हीं तथ्यों को हमने जोड़ने की कोशिश की है। आज हम भारत के सबसे पुराने साहित्य और सबसे समृद्ध साहित्य के समानताओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक तमिल साहित्य है और एक हिंदी साहित्य। यह एक बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि तमिल साहित्य और हिंदी साहित्य में बहुत से कवियों के विचार बहुत ही समान मिलते हैं, बहुत ही चीज समान रूप में मिलती है। अगर इस पर चर्चा की जाए तो बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप एक चर्चा आज हम कर रहे हैं, जिनमें आज हम हिंदी के कबीर जी और तमिल के तिरुवल्लुवर जी, इनके साहित्य पर हम चर्चा करेंगे। यह एक बड़ा ही सुखद एहसास कहा जा सकता है कि तिरुवल्लुवर जो आज से 2000 साल पहले हुए और कबीर जी जो आज से 500 साल पहले हुए, इनके साहित्य में 1500 साल का फर्क है, लेकिन दोनों में इतनी समानता है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि दोनों साहित्य अलग अलग लिखे गए हैं। स्वर्ण ज्योति जी, मैं सही तो नहीं सही कह रहा हूँ ना?
जी अजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सबसे पहले श्रोताओं को नमस्कार कहना चाहूंगी और उसके साथ ही मैं सभी श्रोताओं से और भावना जी से और अजय जी आपसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि पिछले बार के एपिसोड में मुझसे एक छोटी सी त्रुटि हो गई थी जिसे मैं सही करना चाह रही हूँ। तमिल साहित्य के उद्गम के समय मैंने एक बात कही थी कि तमिल के वर्णमाला में एक ऐसा वर्ण मिलता है जो शायद किसी अन्य वर्णमालाओं भाषा की वर्णमाला में नहीं मिलता है, परंतु यही मेरी भूल हो गई थी। कई अनेक भाषा वर्णमाला में नहीं मिलता है, पर कुछ भाषाओं की वर्णमाला में वह मिलता है, जैसे कि मलयालम है, मराठी है, इन वर्णमालाओं में वो वर्ण मिलता है और मलयालम में शायद अभी भी उसका प्रयोग भी किया जाता है। तो ये मुझसे छोटी सी भूल हो गई थी, अतः मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके बाद मैं अब तिरुवल्लुवर के बारे में हम आगे बात करना चाहेंगे। तो जैसे कि अजय जी ने कहा कि तिरुवल्लुवर जी 2000 साल पहले के साहित्यकार हैं, संत हैं बहुत बड़े, और उसके साथ हम कबीर की रचनाओं के बारे में बात करते हैं जो अभी 500 साल पहले की ही बात है, परंतु इतना भाव साम्य इन दोहों में मिलता है कि आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। और एक बात और मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी कि हम तुलनात्मक विवेचन नहीं कर रहे हैं, केवल भाव साम्य जो मिलता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और उसका कारण यह है कि मानव समाज में होने वाली मूलभूत समस्याएं कमोबेश हर काल में समान ही रही है, इसलिए उसका सामना करने के लिए जो हल मनुष्यों ने दिया है, जो विचार उनके उन्होंने रखे हैं, उनमें भी साम्यता मिलती है। और एक साथ ही मैं तिरुवल्लुवर जी के कुरल के बारे में बात कहूंगी कि 1959 में एक विद्वान हुए एम जी वेंकट कृष्णन, उन्होंने इसे हिंदी में अनुवाद किया और भारत सरकार के द्वारा उनके इस कार्य के लिए उन्हें उस समय ₹1,000 का सम्मान दिया गया था। और इसके साथ ही तिरुकुरल की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे बाइबिल के बाद इसका अनुवाद सबसे ज्यादा भाषाओं में हुआ है, भारतीय हो या विदेशी हो।
अच्छा।
और यह एक विश्वास है आज मुझे इस चर्चा से कि हिंदी राज्यों में, हिंदी तर राज्यों में और साथ ही दक्षिण के भी कई राज्यों के निवासियों को तमिल भाषा के उत्तम ग्रंथों की झांकी अवश्य प्राप्त होगी तिरुवल्लुवर के तिरुकुरल के माध्यम से।
मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा, तिरुकुरल जो है एक साहित्य का नाम है जो तिरुवल्लुवर जी ने लिखा था, और यह इतना मतलब आप कह सकते हैं कि प्रसिद्ध है कि तमिलनाडु में इसको हर घर में रखने की प्रथा है, और जिस घर में तिरुकुरल नहीं मिलता है उसे हे दृष्टि से देखा जाता है। आप ये मान सकते हैं कि हर परिवार, हर जनमानस के मन में बसा हुआ ये साहित्य है। आज हम इसी साहित्य की तुलनात्मक अध्ययन कबीर जी से करें, तुलना नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं समानता पर हम अध्ययन करेंगे। कबीर जी ने क्या लिखा है और तिरुवल्लुवर जी ने क्या बताया है। दोनों ने विभिन्न भावों पर लिखा है, विभिन्न विषयों पर लिखा है। इसी क्रम में हम एक पहला विषय लेके चलते हैं, पहला भाव लेके चलते हैं। एक भाव होता है प्रेम का। प्रेम का भाव मानव में बहुत स्वाभाविक है, और प्रेम का भाव ही वो भाव है जो मानव को अन्य जीवों से अलग करता है। तो हम अपनी चर्चा प्रेम के भाव से शुरू करते हैं। प्रेम के भाव पर कबीर जी का एक बहुत ही मशहूर दोहा है, बहुत अच्छा दोहा है कि जा घट प्रेम न संवरे, जा घट प्रेम न संवरे, वो घट जान मसान, जैसे खाल लुहार की सांस लेते बिन प्रभु। ये दोहा जो है ये कबीर जी ने लिखा है, और उसके समानांतर दोहा तिरुवल्लुवर जी ने लिखा है तमिल में, और उसका अनुवाद जैसे आपने अभी बताया आपको कि उसका अनुवाद हिंदी में किया गया है, हम आपको कबीर का, तिरुवल्लुवर का तमिल दोहा और हिंदी का अनुवाद दोनों बताएंगे, और उसका अर्थ भी बताएंगे कि इन दोनों दोहों में क्या समानता है। सोन ज्योति जी आप जरा बताएंगे तो अच्छा रहेगा।
जी अजय जी, मानव जीवन प्रेम के आधार पर ही चलता है ऐसा माना जाता है और प्रेम ही ईश्वर भी माना जाता है। तिरुवल्लुवर का कथन है, जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं है वह निर्जीव है। तो उन्होंने तमिल में कुछ ऐसा लिखा उसका அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அகதிலார்க்கு, அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அகதிலார்க்கு, என்பி தோல் போர்த்து உடம்பு. இஸ்கா அர்த்த ஹை ஹிந்தி மே பிரேம் மார்க் பர் ஜோ சலே, பிரேம் மார்க் பர் ஜோ சலே தேஹ வஹி சப் பிராண், சர்ம லபேட்டி அஸ்தி ஹை, சர்ம லபேட்டி அஸ்தி ஹை பிரேம் ஹீன் கி மான். जैसे कि कबीर ने, अजय जी ने बताया कि कबीर ने कहा, जो घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिनु प्राण। तो देखिए कितनी समानता है दोनों दोहों में। इसके साथ ही तिरुवल्लुवर एक बात और कहते हैं कि प्रेम को छिपाना कठिन है, चाहे वो लौकिक पक्ष हो या परालौकिक। और जब हृदय प्रेम से अभिभूत होता है तब अश्रुधारा अपने आप फूट पड़ती है। तो इसलिए वो कहते हैं, अनबिन रुक्क उंडो अड़क ताश आर वलर, अनबिन रुक्क उंडो अड़क ताश आर वलर, पुन कन्नीर पुयल तरुम, पुन कन्नीर पुयल तरुम। मतलब अर्गल है क्या जो रखे प्रेमी उर्मे प्यार, अर्गल है क्या जो रखे प्रेमी उर्मे प्यार, घोषणा करती साफ ही तुच्छ नयन जलधार। यानी नयनों की जलधार से ही उस प्रेम का प्रेम व्यक्त हो जाता है। और इसी से
इसका
कुछ
समान,
इसी
इसका
से मिलते
समानांतर दोहा जो है,
जी समान
इसका समानांतर दोहा है एक कबीर जी का,
कि
प्रेम छिपाए ना छिपे,
जी
प्रेम छिपाए ना छिपे जाकर प्रगट होए, जो पे मुख भोलत नहीं नैन देते हैं रोज।
देखिए कितनी
समानांतर
अच्छी,
दोहा
जी
है।
कितनी अच्छी बात दोनों कहते हैं कि नयन जलधार घोषणा करती है और यहाँ कहते हैं नयन देते हैं रोज। मतलब दोनों के भाव कितने समानता मिलती है। कभी कभी जब मैं तिरुवल्लुवर को पढ़ती हूँ और कबीर को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है शायद कहीं तिरुवल्लुवर का पुनर्जन्म तो नहीं हो गया है।
इसमें शायद ये कहा जा सकता है कि कबीर ने शायद प्रेरणा ली हो कबीर जी ने, या कबीर ने, या तो ये संयोग हो सकता है या प्रेरणा ली हो सकती है या कुछ बात, जो भी बात रही हो, लेकिन दो भाषाओं में इस तरह की समानता मिलना और वो भी इतने समय के बाद, ये हमारे लिए एक हर्ष का विषय ये है कि जिस तरह से हम भाषा के रूप में बटे रहते हैं, हमें ये मानना चाहिए कि भाषा जब समान हो सकती है, उनके भाव समान हो सकते हैं, तो हमें इस भाषा का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं ये श्रोताओं को कहना चाहूंगा। और इस क्रम में हम एक और भाव लेके चलते हैं। एक भाव होता है वियोग का। जब प्रेम होता है तो उसमें वियोग स्वाभाविक है, प्रेम है और दूरी आ गई तो वियोग आ ही जाता है। अब देखते हैं वियोग में दोनों कवि किस तरह समान है। कबीर जी का एक दोहा है वियोग पर, प्रियतम प्रियतम मो पतिया लिखूं जो कहूं होए विरे, तन तन में मन में नैन में ताको कहो को संदेश। ये जो एक दोहा है कबीर जी का, इसके समानांतर तो बड़ा अच्छा दोहा है तिरुवल्लुवर जी का। इसके बारे में सोन ज्योति जी बताएंगी, उनका हिंदी अनुवाद भी बताएंगी, तो आपको पता चलेगा कि कबीर जी के दोहे में और तिरुवल्लुवर के दोहे में वियोग भाव पर क्या समानता है और हमारी दोनों भाषा किस तरह से समान है भाव के रूप में।
जी अजय जी, आपने सही कहा कि भाषाएं के भाषाओं के आधार पर हम एक दूसरे से दूरी जो बना लेते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सभी भाषाएं एक भाषा तो केवल संपर्क माध्यम है, परंतु भाव तो सब एक ही है। तो जैसे कि आपने कहा कि वियोग के बारे में तिरुवल्लुवर कबीर जी ने जो कहा है, उसके समकक्ष तिरुवल्लुवर जी ने एक दोहा कहा जो मैं आपको सुना रही हूँ। वो दोहे में कहते हैं तिरुवल्लुवर जी, मुझे एक एक समय एक मिनट का समय दे, मैं अभी आपको सुनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे जरा सा
मैं उस दोहे को दोबारा रिपीट कर
जी,
दूं
आप
जो
दोहे
कबीर जी ने लिखा
दोहे
है।
को रिपीट कर दीजिए।
हाँ, प्रियतम जो पतिया लिखूं जो कहूं हो गए जो कहूं हो विदेश, तन में मन में नैन में ताको कहा संदेश। ये दोहा जो कबीर जी ने लिखा है, और आप देखिएगा कि तिरुवल्लुवर जी ने कितनी सुंदरता से तमिल में लिखा था और उसके हिंदी उसका उसका अनुवाद किया गया है। ये कितनी समानता है दोनों साहित्य में। और जब हम बात करते हैं भावों की, तो इसके अलावा वियोग के अलावा कई और भाव भी हैं। हमें ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, बड़ी सुखद विषय है कह सकते हैं, और कि दोनों साहित्य में कितनी समानता है। और ये हमारे लिए बड़ी अजीब सी बात है कि साहित्य में इतनी समानता हुए होते हुए हमने भाषा, क्यों ना हम साहित्य की समानता को समझें, भाषा की समानता को समझें, तो हम जानेंगे कि इंसान के भाव एक ही रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आता। सिर्फ भाषा का माध्यम अलग होने से इंसानों के भाव में फर्क नहीं आना चाहिए। आइए जानते हैं क्या समानता है इन दोनों के बीच में।
जी
सोन ज्योति जी, शायद आप तैयार होंगी।
सर, मैं एक बात जानना चाहूंगी कि
जी जी
कबीर का जो प्रेम है वो लौकिक प्रेम ना होकर पारलौकिक प्रेम है,
जी
और ईश्वर के प्रेमी और वो उनकी प्रेमिका, उन्होंने खुद कहा इस बात को,
जी
तो क्या तिरुवल्लुवर जी का भी प्रेम पारलौकिक प्रेम ही, और विरह का भी जो वर्णन कबीर दास जी ने किया वो भी उनका पारलौकिक ही प्रेम है, ईश्वर से जो दूरी है उसके लिए ही उन्होंने ये सब विरह की बातें लिखी हैं।
जी भावना
इस
जी,
चीज
कबीर के प्रेम की तरह ही पारलौकिक प्रेम तिरुवल्लुवर जी का भी है। और उनकी विशेषता ये रही कि वो प्रेम पर तो बात कहते ही हैं, साथ ही वो अनेक अन्य विषयों पर भी बात कहते हैं, जैसे गृहस्थ है, समाज है, प्रेम है, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, और लौकिक और पारलौकिक प्रेम दोनों की चर्चा वो कहते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि उन्होंने केवल 1330 दोहे लिखे हैं, और उसी में उन्होंने सारा सारा भाव समेट लिया है, गृहस्थ जीवन, पत्नी
जी
पति, प्रेमी प्रेमिका, बच्चे, समाज, भ्रष्टाचार, आचरण, युद्ध, सभी कुछ। तो कबीर की तरह ही उनके उनकी प्रेम की जो परिभाषा है, वो भी परालौकिक प्रेम से ही जुड़ी हुई है। तो मैं
जी
अभी अब हम बात कर रहे थे, वियोग की बात कर रहे थे, तो वियोग
जी
में तिरुवल्लुवर जी कहते हैं, उल्लत्तार कादल वराह, कादल मतलब प्रेम होता है, उल्लत्तार मतलब हृदय, उल्लत्तार कादल वराह उल्लीनी मतलब तुम्हारे अंदर, यारश्चे चेरी एन नेंजू, मतलब आगे मैं उसका हिंदी में करेक्ट सही सही ये दोहा पढ़ के सुनाती हूँ। तेरे अंदर जब रहा प्रियतम का आवास, तेरे अंदर जब रहा प्रियतम का आवास, रे दिल उनका स्मरण कर जावे किसके पास, रे दिल उनका
बहुत
स्मरण कर
बढ़िया,
जावे किसके पास,
जावे
नैन
किसके
में
पास।
मन में तन में नैन में ताको कहां संदेश।
जी, तो ये कह नहीं सकते कि संदेश हमें कहाँ से मिल जाएगा, बहुत सही बात कही। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो मनुष्य के आचरण में वियोग प्रेम के अलावा एक और आचरण होता है कि हम जब बात करते हैं तो हम किसी की बात से सहमत होते हैं और किसी की बात से सहमत नहीं होते, और जब सहमति असहमति की बात आती है तो बुराई भलाई की बात आती है, कि जो किस दिन से हम असहमत नहीं होते उनको हम बुरा कहने लग जाते हैं। तो बुराई और भलाई भी एक आचरण है। और आश्चर्य की बात यह, आप देखिए इस आचरण, मनुष्य के इस आचरण पर भी दोनों के, कबीर के और त्रिविलर के साहित्य में कितनी समानता है। मैं कबीर जी का दोहा पढ़ के सुनाता हूँ, जो ताको काटा बोए ताही बोए तो फूल, तो को फूल ही फूल है बाको है त्रिशूल। ये कबीर जी का दोहा है। अब आप देखिए त्रिविलर जी ने इसके समान पर दोहा किस तरह से लिखा है।
देखिए सही बात कही अजय जी आपने कि जब आदमी इंसान प्रेम की मूर्ति बन जाता है तो वह क्षमाशील भी बन जाता है। तो तिरुवल्लुवर कहते हैं कि मनुष्य को इतना क्षमाशील होना चाहिए कि बुराई करने वालों के बदले भलाई करे, और ताकि उसका हृदय परिवर्तन करने में इसका इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं है, ये तो सभी मानते हैं। तो तिरुवल्लुवर जी कहते
जी
हैं, मैं तमिल में पहले सुनाती हूँ आपको, इन्ना चैदारे ओरुत्तल वरुणार, नन्नयम चैदु विडल, इन्ना चैदारे दारे वरुत्तल अवरनान, नन्नयम चैदु विडल, मतलब चैदु विडल मतलब करो। तो इसका अर्थ होता है, बुरा किया तो कर भला, बुरा किया तो कर भला, बुरा भला फिर भूल, पानी पानी हो रहा बस उसको यह शूल। सुनिए
जैसे तो को फूली फूल है बाकी को
हाँ,
त्रिशूल।
तो वो पानी पानी हो रहा है, मतलब वो खुद शर्म से शर्मिंदा हो जाएगा और उसको यही चुभेगा कि तुमने, मैंने बुरा किया फिर भी उसने भला किया। तो आचरण,
इसके आगे,
जी,
हाँ जी बोलिए बोलिए आप बोलिए।
आचरण में भलाई और बुराई, ये आचरण तो सभी मानते हैं कि अरे उसने बुरा किया तो हम भी बुरा करेंगे, तो उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। तो ये ऐसा भाव है जो सदियों से मानव के साथ चला आ रहा है। और मैंने पहले भी बताया कि समाज में जो असमानताएं होती हैं, मूलभूत समस्याएं जो पैदा होती हैं, वो कमोबेश हर हर काल में एक सी ही होती है। तो उसके निवारण के
जी
लिए
जी
एक सी ही बात कही जाती है, और यही कारण है कि हम इन संतों की बात जब हम करते हैं तो हमें बहुत समानता मिलती है।
इस बात पर एक आचरण का एक भाव आता है, जब हम किसी से बुराई करते हैं, बढ़ाई करते हैं, ये एक आचरण ही होता है इंसान का कि वो क्या कर रहा है। और जब हम आचरण की बात करते हैं तब भी आप देखिए कितनी समानता मिलती है और एक कितना मतलब आपस में मेल खाते हैं। आचरण में कबीर जी का एक दोहा है, कहता तो बहता मिलो, कहता वो बहता मिलो, कहता मिला ना कोई, सो कहता वही जान दे जो नहीं जानता होए। ये दोहा है कबीर जी का, शायद मैं उच्चारण गलत कर रहा हूं, मेरे को अगर मैं
मैं
गलत नहीं
पढ़
बोल
के
रहा हूं तो।
सुनाती हूँ। कहता
जी जी जी
तो
जी
बहता मिला, कहता तो बहता मिला, गहता
बहता मिला,
मिला न कोई, सो कहता वही जान दे जो नहीं गहता होए।
जी, यही है। और शायद मेरे उच्चारण थोड़ी गलती हो गई थी, मैं माफी चाहता हूँ। अब आप देखिए कि तिरुवल्लुवर जी ने इस दोहे को किस तरह लिखा है। आप ये मान लीजिए ये दोहा उनका प्रतिबिंब है या वो इनका प्रतिबिंब है, ये कहना मुश्किल हो जाएगा। सोन ज्योति जी इसका अर्थ समझाएंगे, तमिल में किस तरह से लिखा गया है।
जी, तमिल में तिरुवल्लुवर जी कहते हैं, इस दोहे के समकक्ष उनकी एक बात है, वो कहते हैं कि संसार में अपने कथन के अनुसार करने वाले तो बहुत ही बिरले होते हैं, क्योंकि ये दुस्साध्य है। आचरण करने वाले ही आचार्य होते हैं। और इस तिरुवल्लुवर इसके संबंध में, जैसे कहता तो बहता मिला, इस संबंध में वो कहते हैं कि ऐसी ऐसे लोगों की मित्रता जो है स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो एक तरह कहें और एक तरह करें उनकी मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। तो इस विषय में वो कहते हैं, ओल्लुम करुमम उड़ट्टु परम केणम, ओल्लुम, नहीं सॉरी, माफ कीजिएगा, मैंने जरा सा दूसरा पढ़ दिया इस विषय में। जी, कन विनुम इन्नादु मन्नो विनो विनय वेरु। कन विन मतलब सपना होता है। कन विनुम इन्नादु मन्नो विनय वेरु शोल्लवरु पट्टार तोड़ रप्पू। मतलब उनका कहना है, कहना कुछ करना अलग, कहना कुछ करना अलग, जिनकी है यह बान उनकी मैत्री खाएगी सपन में भी जान।
जी जी
तो
जी मतलब अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अगर ये दोस्त अच्छा ना हो तो आपको ज्ञान देगा लेकिन आपका काम नहीं करके देगा, इस तरह से अगर दोस्त अच्छा नहीं है तो उनकी मैत्री आपको नुकसान
जी,
ही
नुकसान
करेगी।
ही करेगी। और इसी संदर्भ में वो एक और बात कहते हैं कि मैंने बताया ना कि
जी
आचरण करने वाले ही आचार्य होते हैं, और जो खा जाता है वैसा ही जो करें, ये कितना दुस्साध्य है। इस विषय पर भी वो कहते हैं,
जी
शुल्लदुल यारकुम ऐ अरिवाम, अरिवाम अरिवाम मतलब समझ में आना। शोल्ले लिया वर्णम
जी
शयन,
जी
शोल्ले लिया मतलब कहा नहीं ना, वर्णम शयन, कहना तो सबके लिए है, कहना तो सबके लिए रहता है आसान, करना जो जैसा कहे, करना जो जैसा कहे है दुस्साध्य निदान।
ये लाइन बिल्कुल मेल मेल खाती है। सो कहता भाई जान दे, और जो नहीं कहता कोई। हाँ जी,
और इसके
आ जब
जी जी
जी
ये आप
जी जी
बताएं, आप
बोलिए
कुछ
बोलिए।
और कबीर के बारे में बता रहे थे, बताइए।
नहीं, मैंने वो लाइन, मैंने कहा था कि जो आखिरी दो लाइन है वो बहुत ही एकदम से मेल खा रही है, इसलिए बोलना चाह रहा था।
जी, वो आखिरी दो लाइन जो है बहुत, इसके साथ ही कबीर और तिरुवल्लुवर में एक समानता और भी मिलती है। कबीर ने भी कहा कि मीठी वाणी कितना कितना अच्छा काम करती है, वाणी जो मधुर होती है तो जीवन में सफलता
ऐसी
प्राप्त
वाणी
कर
बोलिए।
सकते हैं। और ये जो वाणी मधुर होती है, इस विषय पर उपनिषद में, यजुर्वेद में, वेद वेदांत में, सभी में बात कही गई है कि मृदुभाषी होने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। और यह सरल उपाय को काम में लाकर हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, यह भी कहा गया है। तो इस विषय पर तिरुवल्लुवर जी कहते हैं, मैं पहले हिंदी में
कबीर
नहीं,
का ये
हाँ,
समान,
रहते
हाँ हाँ मैं कबीर के समांतर
जी,
दोहा बता
बताइए
दूं आपको।
बताइए।
वो ऐसे है कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, वो वाला दोहा
हाँ,
बता रहे
वो
हैं
वाला
ना।
दोहा भी है, इसके साथ उनका एक और दोहा भी है। आप कबीर का
कबीर
दोहा बताइए।
का दोहा इसमें आपने नहीं, इसमें नहीं है, क्योंकि आपने वाणी के बारे में बताया, वाणी का दोहे की बात तो ही नहीं, इसमें वो
हाँ, तो
सूची में
कबीर
नहीं
का
है।
एक दोहा तो बहुत ही प्रसिद्ध है ना,
ऐसी वो ऐसा कैसी वाणी बोलिए ये इस तरह
ऐसी
से है
वाणी
वो,
बोलिए मन का आपा खोए,
बोलिए मन का
औरों
आपा
को
आपा
शीतल
खोए,
करे, आप भी
औरों को
शीतल
शीतल
होए।
करे,
और
वो शीतल है।
उनके साथ
जी।
कबीर जी ने एक और दोहा कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है वे
जी
संचारे,
जी
साले सकर शरीर। तो उन्होंने कहा जी, तो
अच्छा
तिरुवल्लुवर जी भी इसके समकक्ष एक दोहा कहते हैं।
जी
तिरुवल्लुवर जी कहते हैं, इने उल्लाह इन्नाद कुरल, इने इने मतलब मीठा होता है, इने उल्लाह इन्नाद कुरल, कुरल मतलब कहना, कनी रूप पक्कू काय कवर अंदर टू, मतलब वो कहते हैं कि रहते सुमधुर वचन के, रहते सुमधुर वचन के कटु कहने की बाण, यूं ही पक्का छोड़ फल कच्चा ग्रहण समान। तो उनका कहना यह है कि कटु बात कहते हैं तो बात ऐसी होती है जैसे कि अच्छा फल छोड़ के अध कच्चा अध पका फल खाने के समान कटु बात की जाती है, जो सभी को दुखी कर देती है, तीर सी चुभती है। और जैसे कबीर जी ने भी कहा ना कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, तो यह कटुक वचन है तीर कबीर कहते हैं, और तिरुवल्लुवर जी कहते हैं कच्चा फल।
जी, कच्चा फल भी कहते
जी,
हैं, स्वाद
तो
बिगाड़ देता है।
कटुक वचन जिस तरह तीर से भी भयंकर सीधे शरीर के एक अंग को छेदना शरीर को दुखाती है, उसी तरह कच्चा फल भी शरीर को नुकसान पहुंचाती
जी, इस वाणी के अलावा एक और भाव आता है मनुष्य में कि ठीक है, वाणी तो अगर हमारी कटु होगी तो हम किसी को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, और मीठा बोलेंगे तो इंसान आपसे जुड़ता है और प्रसन्नचित भी होता है। इसके कटु वाणी के अलावा एक और भाव आता है इंसान में, छल कपट का, कि हम छल से सब हासिल करना चाहते हैं, कपट करना चाहते हैं, झूठ बोलते हैं। छल कपट पर भी कबीर की जी के और त्रिवुलर के बहुत से दोहे ऐसे हैं जो आपस में बहुत मेल खाते हैं। मैं उदाहरण तो एक दोहा बोलना चाहूंगा, केसन कहा बिगाड़िया जो मूंडो सो बार, मन को क्यों नहीं मूंडिए जा जा में विषय विकार। अब आप देखिए, जो एक छल कपट के बारे में बात बोली है कबीर जी ने, त्रिवुलर जी ने इसके समानांतर क्या बोला है और उसका अर्थ क्या है, वो आपको स्वर्ण ज्योति जी बताएंगी।
वास्तव में मुझे लगता है कि मैं जो तमिल में कहती हूँ वो शायद बहुत कम समझ में आएगी श्रोताओं को, फिर भी मैं चाहती हूँ कि वो तमिल का सुने, ताकि हमने तमिल में तिरुवल्लुवर जी ने जिस तरह कहा है ऐसा पता चलेगा उन्हें।
उसका अनुवाद या अनुवाद आप बता रहे हैं ना, तो अनुवाद तो मिल ही रहा था आपको उसका।
तो अभी हम बात कर रहे हैं
केसन कहा
छल
बिगाड़ी
कपट
या
की
जो
बात
मुंडो
कर रहे
सो।
हैं जी। तो
जी 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 जी
तिरुवल्लुवर का मानना यह है कि साधु वेश धारण करने से कोई साधु नहीं हो जाता, चित्त शुद्ध होना चाहिए। जिसके मन में छल कपट और पाप विचार हो वो कैसे साधु महात्मा कहलाएगा? तो साधु महात्मा
जी
तो
जी
वही होगा जो जिसके मन में पवित्रता हो और उसके साथ साथ वो सारे निंदित काम ऐसे कामों से वो दूर रहे। तो तिरुवल्लुवर जी कहते हैं छल कपट, उनका हिंदी का दोहा है, साधक ने यदि तज दिया, साधक ने यदि तज दिया
जी
जग निंदित
जी
सब काम, उसका मुंडा या जटिल बनना है बेकाम। तो इसका तमिल अनुवाद है वो जरा सा कठिन है पढ़ने में, तो मैंने पहले हिंदी में पढ़ दिया आपको, पर मैं तमिल में भी पढ़ के सुनाती हूँ। वो कहते हैं तमिल में, मणितुलम निट्टलुम वेंडा उल्हम, मणितुलम निट्टलुम वेंडा उलगम, पड़ित्तदु ओरेत्तदु विडन। उलगम मतलब जग, पड़ित्तदु मतलब त्याग देना, विडन मतलब छोड़ देना। साधक ने यदि तज दिया जग निंदित सब काम, उसको मुंडा या जटिल बनना है बेका। तो
देखिए दो या ये लाइन कितनी मेल खाती है। मन तो क्यों ना मूड ये जा में विषय विकार, और जो आपका तज देने वाली जो लाइन है, दोनों कितनी मेल खाती है आपस में। ऑलमोस्ट एक तरह से समान
जी बिल्कुल
पंक्तियां हैं।
समान सी लगती।
इस छल कपट के भाव पर एक दोहा और है कबीर जी का, बहुत ही काफी मशहूर दोहा है, और इस पर भी कहते हैं त्रिवेदी जी ने इनके समानांतर दोहा लिखा है कि नहाए धोए क्या भया जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए धोए बास न
धोए
जाए।
धोए
ये दोहा कबीर जी का है।
धोए धोए
जी
बास ना जाए, बहुत ही प्रसिद्ध धोआ दोहा है। तो इसके
जी
समकक्ष
जी
तिरुवल्लुवर जी भी कहते हैं, मनत्तदु मषार मंडार नीराड़े, नीराड़े मतलब पानी में रहना, मरे न दोषम
जी
मंदार पलर। मनत्तदु माषाह मंडार नीराड़ी, मरे न दोषहु मंदार पलर। मतलब नहा तीर्थ में ठाट से, नहा तीर्थ में ठाट से रखते तापस भेस, मिथ्याचारी है बहुत हृदय शुद्ध नहीं लेश, मिथ्याचारी है बहुत हृदय शुद्ध नहीं है लेश।
जी 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 बिल्कुल। कहते हैं देख कितने, मतलब ये देखने वाली बात ये है कि कितना अंतर है दोनों की साहित्य में, ये कितना मेल खाता है, और ये साबित करता है कि इंसान में भाव वही रहते हैं, समय काल बदल जाए लेकिन
जी
भाव नहीं
बिल्कुल नहीं
बदलते।
बदलते।
और जी अगला हमारा मधुर वचन का है। मधुर वचन पे शायद हम बात कर चुके हैं, आपने ऐसी वाणी बोली, आपने बताया था। और एक और दोहा था, मधुर वचन है औषधि कुटुक वचन है तीर, इस पर हम शायद
जी मैंने इस
चर्चा
पर
कर चुके
पहले
हैं।
बात की है हमने इस दोहे के
हाँ
पहले, और शायद हम आखिरी दोहे तक पहुंच रहे हैं मेरे ख्याल से।
हाँ एक एक और दोहा आपका है, चाह और मुक्ति का।
चाह और मुक्ति। हाँ
जी, आपने ये बताने की कोशिश की है कि इंसान क्या चाहता है और मुक्ति कैसे मिले, इस पर एक बहुत ही अच्छा दोहा है कबीर जी का, अगर आप बताएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप तुलनात्मक अध्ययन ज्यादा अच्छा कर सकती हैं मेरे ख्याल से।
वास्तव में क्या होता है कि सभी धर्मावलंबी यह मानते हैं कि तृष्णा लोभ या संस्कार सांसारिक सुख भोग की इच्छा ही दुख का समस्त दुख की जड़ है, और चाह से मुक्ति होने पर दुख निवृत्ति हो जाती है, वही मुक्ति है वही मोक्ष है, ऐसा तो सभी मानते हैं। तो तिरुवल्लुवर जी भी चाह से मुक्त होने के लिए सत्य और भगवान पर भक्ति होने की आसक्त होने के उपाय बताते हैं। और जैसे मैं पहले कबीर जी की बात करती हूँ कि तिरुवल्लुवर जी के शब्दों में शब्द मिलाकर कबीर जी घोषित करते हैं। देखिए, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ
चिंता
बेपरवाह,
मनवा
जिनको कछु ना
परवा
चाहिए,
जिनको
जिनको कछु ना चाहिए वो ही
कछु ना,
शहंशाह।
वो हो
तो
शहंशाह।
ऐसी बातें ही
जी
बशीर वल्लोर
जी
जी भी कहते हैं। तू तू उदय में एम्बदु अवाविन मैं मटरुम, तू उए में एम्बदु अवाविन मैं मटरदु, वा आए में वेंडा वरुम, वेंडा मतलब नहीं, वरुम मतलब तू ही में वन, मतलब इसका मतलब वो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन वेंकटेश जी ने बहुत अच्छा किया है। चाह गई तो है वही, चाह गई तो है वही पवित्रता या मुक्ति, करो सत्य की चाह, करो सत्य की चाह तो होगी चाह विमुक्ति। देखिए मुक्ति की बात उन्होंने कितनी सुंदर कही कि करो सत्य की चाह तो होगी चाह विमुक्ति। और यहीं पे कबीर जी भी कहते हैं चाह गई चिंता मिटी। तो मेरा बस हमने ये चर्चा की कि कबीर और तिरुवल्लुवर जी समय के अंतराल के बावजूद भी उनके भाव ही कितने एक साम्य हैं। और साथ ही मैं एक बात और भी इसमें बताना चाहूंगी कि हमने केवल कबीर की बात कही, परंतु तिरुवल्लुवर जी के साथ उनके वचनों की बात, उनके कुरल की बात जब हम करते हैं तो तुलसीदास जी, रहीम, और यहाँ तक महादेवी वर्मा जी के साथ भी उनकी कई कई दोहे उनके मिलते जुलते हैं। तो हिंदी साहित्य के कई विचार, जहाँ हमने कई बहुत कुछ हमने उसमें हिंदी साहित्य के जो बहुत बड़े बड़े रहीमन पानी राखिए बिंदवानी सब सुन, इसका भी उन्होंने बहुत ही सुंदर कहा है इस विषय पर भी। और श्री भगवद गीता के साथ तो उनकी कई विचार मिलते हैं, उपनिषद के साथ उनके विचार मिलते हैं। तो समय का अंतराल कुछ नहीं रह गया है, भाव केवल सब जगह एक ही है
तो
और सभी जगह पूजनीय है।
अगर मैं गलत नहीं बोल सोच रहा हूँ सोनज्योति जी, कि जो पंचवेद तमिल में जिनका उल्लेख है और जो हमारे चार वेद हैं हिंदी में, क्या दोनों में इनमें
नहीं,
समानता आपस में
पंचम
मिलती है?
पंचवेद नहीं है, चार वेद, पंचम वेद कहा जाता है। पंचम वेद, तिरुकुरल को पंचम वेद कहा जाता है,
पंचवेद
मतलब
ओके।
हमारे चार वेद तो है।
हाँ, तो इन इन इनमें इनमें और कोई
नहीं,
समानता है
हमारे जो
आपस
चार वेद है वही चार वेद है, यजुर्वेद अथर्वेद वही चार वेद है, परंतु कहीं भी पांचवे वेद की चर्चा नहीं होती है ना, आपने देखा होगा पांचवे वेद की कहीं चर्चा नहीं होती, परंतु तिरुकुरल को वेद के समकक्ष माना जाता है, इसीलिए उसे पंचम वेद कहा जाता है। जी
पंचम वेद कहा जाता है। तो इस तरह से समानता है कि वेद का एक तरह से जो उसका वृहद रूप है वो पंचम वेद में आता है।
जी इसका इतना महत्व है कि ये वेद के समकक्ष पूजनीय है, ये उनका तिरुकुरल।
तो हम ये मान सकते हैं कि तमिल साहित्य सिर्फ एक साहित्य नहीं है, हिंदी से जुड़ाव उसका है, बल्कि हिंदी का विस्तार भी तमिल साहित्य में मिलता है, हिंदी
जी
का
बहुत
साहित्य।
बहुत कुछ, बहुत समावन है। एक कवि हुए थे हमारे हिंदी साहित्य में, बिहारी की श्रेणी में आते हैं, कविवर देव, शायद उन्हें बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, परंतु वो भी बहुत बिहारी के समकक्ष आते हैं। उनके साथ भी तिरुवल्लुवर जी के बहुत सारे दोहे मेल खाते हैं। जयशंकर प्रसाद आंसू के साथ उनका बहुत सारा है, और मैथिली शरण गुप्त के साथ है उनकी उनके जो दोहे हैं उनसे मेल मिलते हैं। गिरधर शर्मा नवरत्न महादेवी वर्मा की बात मैंने कही, तो आप सोचिए कि साहित्य, उनका साहित्य कितना विशाल और वृहद होगा कि सारी बातें उसमें आ गई हैं जो बाद के छायावादी कवियों में भी उसका प्रभाव दिख रहा है।
तो देखने और समझने वाली बात यह है जो मैं समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जितने भी साहित्य अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं उनमें समानता बहुत ज्यादा है। हम ये मान सकते हैं कि पृष्ठभूमि सबकी एक ही रही है, और हमें ये मान के चलना चाहिए कि जिस तरह कहा जाता है भारत एक है, तो हमारा साहित्य भी अंदर से एक ही है। हम अलग नहीं हो सकते किसी भी तरह से, हमें भाषा का भेद नहीं करना है, क्योंकि हमारा मूल, हमारा साहित्य, हमारे जो मार्गदर्शक है वो एक ही है,
जी
मार्ग के मूल।
मैं इस संदर्भ में एक बहुत ही अच्छा कविता की चार पंक्तियां जरूर सुनाना चाहूंगी जो गिरधर शर्मा नवरत्न जी ने लिखी थी और
जी
बहुत प्रसिद्ध है, शायद सभी ने, आप भी जानते हैं और भावना जी भी जानती होंगी और बहुत से श्रोता भी इसे जानते होंगे। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो इसके इसकी बात कहते हैं तो
वाह
आशय से कुरुल में एक
बहुत
है इसकी बात, इसी इसी से मिलता जुलता। करते करते अध्ययन अधिक सुखद जो ग्रंथ, करते करते अध्ययन अधिक सुखद जो ग्रंथ, परिचय बढ़वर सुजान की, मैत्री दे आनंद।
वही, कितनी समानता है दोनों में आपस में, इवन यहाँ तक कि
जी
शब्द भी में आपस में
तो
मेल खा रहे हैं।
ये है, इसीलिए शायद तिरुकुलर को इतना महान ग्रंथ माना जाता है कि उसमें साहित्य की चर्चा तो है ही, साथ ही सारे भाव मिलते हैं और साहित्य की वृद्धि के लिए शायद तिरुकुरल ने बहुत काम किया है, ऐसा मैं मानती हूँ।
मेरा मानना यह है कि अगर हमें हिंदुस्तान की संस्कृति को पूरी तरह समझना है तो हमें दूसरी भाषाओं के साहित्य का अध्ययन जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, जिससे मालूम चले कि हमारे
जी
अंदर कितनी
बिल्कुल, आप
समानता है
सही कह रहे
आपस
हैं, ऐसा जरूर करना चाहिए। कम से कम हमारी भाषाएं इतनी समृद्ध हैं, भारतीय भाषाएं, और यही कारण है कि शायद हमारा साहित्य भी बहुत समृद्ध है और एकता में, अनेकता में एकता का कारण भी यही है कि हम सभी एक दूसरे से अपने भावों के साथ ही मिले हुए हैं।
जी। आपने बिल्कुल सही कहा। अब हम इस कार्यक्रम को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। मैं भावना जी से अनुरोध करूंगा कि उनके उनके अगर शायद उनकी तरफ से भी कोई विचार होंगे, कोई सवाल होंगे जो आप जानना चाहेंगे, श्रोताओं की तरफ से आप जानना चाहेंगे, जो हमने जिस पर हमने विचार ना किया हो, तो आप पूछ सकते हैं भावना जी।
नहीं सर, कुछ नहीं पूछना, बहुत अच्छा लगा आज। और कबीरदास जी तो हम सबके प्रिय हैं ही, लेकिन उनके साथ आज हमें तिरुवल्लुवर जी को भी जानने का अवसर मिला। और वो जो आप ग्रंथ की बात मैम कर रही हैं, तिरुकुरल को रखना हर घर के लिए पवित्र मानते हैं, जैसे रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण को रखना, तो मेरे ख्याल से खाली रखने से नहीं कुछ होता, इनमें विचार ऐसे हैं कि इस वजह से रखा जाता है हर घर में। लेकिन वही होता है कि हम विचारों को तो भूल जाते हैं और बस ग्रंथ रख के और उसकी पूजा कर लेना और कपड़े में लपेट देना, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन आज आपकी बातों से बहुत हमें अच्छी सीख मिली है। और सही आप कह रहे हो कि भाषा की असमानता हो सकती है लेकिन भाव की नहीं, और हर भाषा का ज्ञान, हर भाषा के साहित्य को हमें पढ़ना चाहिए।
बहुत
बिल्कुल
बहुत
आपने ठीक
धन्यवाद
कहा
भावना
मैम,
जी, और अजय जी आपका
बहुत
भी
अच्छा
बहुत
लगा
बहुत
मुझे, तो कुछ
धन्यवाद।
नहीं पूछना।
आपका आभार सौंदर्य जी, आप आए और आपने इतने ज्ञान की बातें हमें बताई, इतने श्रोताओं को बताई, शायद अब हम भाषा के भेद से दूर हो जाएंगे।
जी बिल्कुल होना चाहिए सर, इसमें आना चाहिए सुखद परिवर्तन, और देखिए शायद आप लोग के प्रयास सार्थक हो।
आपके आपके जरिए हम ये कोशिश कर रहे हैं, शायद श्रोता भी इस बात से सहमत होंगे।
जी मैंने पहले इस विषय में सबसे पहले बात मैंने यही कही थी कि एक विश्वास है कि आज की ये चर्चा से हिंदी राज्यों के निवासियों के साथ साथ हिंदी भाषी और तमिल भाषी का अंतर भी समाप्त होगा और उत्तम ग्रंथों की झांकी सभी को प्राप्त होगी, इसी आशा के साथ।
हम लोगों ने विभिन्न भाषाओं के साहित्य पर जो ये कार्यक्रम की शुरुआत सोची है मैम, और दक्षिण भारत से शुरुआत हुई, एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शायद उत्तर भारत से दक्षिण बहुत
जी
साहित्य के क्षेत्र में तो बहुत कटा हुआ है मेरे ख्याल से, नहीं लोग जानना चाहते, तो जानना भी नहीं चाहते मुझे लगता है, तो इसलिए अच्छी बात है कि एक जानने की कोशिश हो रही है। तो बहुत आभार आप दोनों का कि आप लोग इतना समय दे
आपका
रहे हैं
आभार
इस चीज
भावना
में
जी।
मैम
धन्यवाद
सर।
अजय जी, और बहुत बहुत
जी
धन्यवाद
सर,
भावना जी।
बहुत बहुत
भावना जी
धन्यवाद आप
आपको
दोनों का।
आगामी कार्यक्रमों के लिए शुभकामनाएं।
भावना जी को
जी
मैं
मैम,
कहते हैं साधुवाद
धन्यवाद।
देना चाहूंगा कि आपके चैनल के प्रयास से हम विभिन्न भाषाओं के साहित्य को जोड़ पा रहे हैं।
सर मैं ये कहना चाहूंगी कि स्वर्ण ज्योति जी का भी हम कार्यक्रम रखना चाहेंगे, उनकी जो पुस्तकें हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे, उनके साहित्य के बारे में, जब भी उनको समय
बहुत अच्छा
हो
विचार, बहुत
तो
अच्छा
उनके
विचार
पास
है। वो
स्वागत
कहते हैं
है।
अगर आप स्वर्ण ज्योति जी का एक कार्यक्रम करते हैं तो आपको ये मालूम चलेगा कि कहते हैं कि जो भाषाओं की दीवार है वो कैसे गिराई जा सकती है। मैं बता दूं श्रोताओं को, स्वर्ण ज्योति जी वो व्यक्तित्व है जो 8 भाषाएं जानती हैं और 3 भाषाओं में लिखती हैं। इन्होंने साबित कर दिया है कि भाषाएं हिंदुस्तान को नहीं बांट सकती, और भाषाएं कितनी भी हो हिंदुस्तान अंदर से एक है। तो आप ये समझ सकते हैं स्वर्ण ज्योति जी हिंदुस्तान का एक आकार अपने आप में है, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतना प्रगाढ़ व्यक्तित्व हमारे सम्मुख है। तो एक कार्यक्रम उनकी तरह उनके लिए किया जाएगा तो शायद श्रोता उनके
अरे
व्यक्तित्व को और अच्छे
अरे
से समझ
बिल्कुल,
पाएंगे।
ये मेरा और हमारी श्रोताओं का सौभाग्य होगा, मैम आएंगी तो
भावना
जब
जी,
भी उनको
आपका
समय हो वो बताएं तो हम उनको बिल्कुल बुलाना चाहेंगे।
भावना जी आपका
और सर
बहुत
मैं
बहुत
एक चीज,
धन्यवाद कि आपने मुझे
हाँ जी
इतना
बोलिए
मान
मैम,
दिया। और अजय जी तो पता नहीं कितना कुछ बोल दिया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस एक छोटा सा
नहीं मैम
मैं तो
आप
केवल एक छोटा
सम्मान है,
सा जर्रा
आपको क्या
हूँ, और
सम्मान
फलक तो बहुत
देंगे
बड़ी बड़ी बात है। पर मैं जरूर आपके कार्यक्रम में आना चाहूंगी, और मैं जरूर कहूँ आप जब भी कहें मैं आपके लिए जरूर कार्यक्रम करूंगी।
बिल्कुल। अच्छा एक बात मैं और कहना चाहूंगी सर, मैम आप लोग हमारे कार्यक्रम तो सुनते ही हैं, और मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी के कार्यक्रम आपने
जी
शायद सुने होंगे, तो बहुत जल्द उनकी एक पुस्तक है सर, इनविजिबल शेड्स ऑफ रामायणा, मैंने आप
जी
लोगों से
जी जी
चर्चा
जी
की थी शायद, उसमें उन्होंने रामायण वाल्मीकि रामायण से 20 चरित्र लेकर, और वाल्मीकि रामायण में भी जो ऐसी बातें कही गई हैं जिनको शायद हम लोग उनसे, मतलब हम लोग का परंपरावादी दृष्टिकोण होता है कि एक ढर्रे पर ही हम उन्हीं बातों को जानते रहते हैं जो परंपरा से चली आ रही है, तो उन्होंने ऐसी बातों का उस पे अध्ययन किया और उनको लिखा है कि जो हम में से बहुत कम लोग
जी
शायद जानते होंगे, तो उस पर
जी
वो चर्चा करेंगे, और बहुत जल्द हम लोग इस कार्यक्रम को भी लाएंगे, तो
जरूर
आप
जरूर
लोग इस
भावना
कार्यक्रम
जी,
को भी सुनिएगा, तो
बिल्कुल
अच्छा
भावना जी
लगेगा हमें।
सुनेंगे।
जी
आप दोनों का
ठीक है
आभार,
मैम, आपका इंतजार
बहुत बहुत
रहेगा हमें।
धन्यवाद भावना जी और
जी
अजय
सर
जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती
ठीक
हूँ।
है सर,
नमस्कार
बहुत बहुत
नमस्कार जी, नमस्कार।
नमस्कार, प्रणाम।